हरे कृष्णा। तो आज सबका स्वागत है आज के इस भागवतम क्लास में, क्योंकि जन्माष्टमी बिल्कुल नजदीक है और सभी वैष्णवों के लिए सबसे बड़ा उत्सव, सबसे मनोहारी उत्सव जन्माष्टमी। केवल वैष्णवों के लिए नहीं, हर प्रकार के जीव के लिए ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है जन्माष्टमी। इसलिए वैष्णव जन जो है अधिक से अधिक कीर्तन श्रवण में अपनी रुचि बढ़ाते हैं और इस उत्सव में तैयारी क्योंकि कई दिनों से शुरू हो जाती है, तो कृष्ण की कथा जन्माष्टमी तक चलती रहे तो ये भी एक तैयारी है। जैसे जब बलराम जयंती आई तो कुछ दिनों से बलराम कथा शुरू हुई है ना, उससे क्या होता है कि हम लोग अपने दिनचर्या में अलग अलग रसों का आस्वादन कर रहे होते हैं, है ना। एक ही दिन में कई तरह के रसों का आस्वादन करते हैं और फिर जो लोग संसार में हैं उनको ऑफिस जाना है, घर में काम देखना है, तो अलग अलग रसों का आस्वादन हो रहा होता है। जो इस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है या जिसके प्रति हमारा तन मन धन लगा हुआ है तो उसी का विचार करना, उसी के बारे में चिंतन करना, उसी की प्लानिंग करना। तो अचानक आपको बिठा दीजिए आज जन्माष्टमी और कृष्ण ही सुप्रीम है और अचानक ऐसा, तो लोगों के लिए थोड़ा सा रसाभास हो जाएगा, है ना, कि अचानक एक रस से दूसरे रस में पहुंच गए। तो इसलिए मूड तैयार किया जाता है। तो मूड कैसे तैयार होगा? भगवान के विषय में अधिक से अधिक सुनने से। तो बलराम जयंती का उत्सव आया और कुछ दिनों से कथा शुरू हुई। तो भगवान के बलराम अवतार में कितने प्रकार की लीलाएं भगवान ने करी, तो वो मूड तैयार किया गया। अब जैसे ही भगवान बलराम जयंती का उत्सव समाप्त हुआ तो हम कृष्ण की जो है तैयारी में लगे कि कृष्ण को अपने हृदय में आप कैसे प्रकट करें, तो अब उसकी तैयारी शुरू। तो सुबह शाम भक्त लोग अब इस पर कथा कर रहे हैं और मूड तैयार किया जा रहा है ताकि हम लोग कृष्ण भावना भावित हो सकें जन्माष्टमी तक। वैसे तो उद्देश्य है कि हमेशा ही रहें, हर समय चिंतन चले, हर चीज़ें चले, लेकिन जो काम धंधे में व्यक्ति है, बहुत सारा कुछ करना है, तो उसको केवल लगता है कि हर समय बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह से मूड तैयार करने का एक भाव तैयार किया जाता है। तो प्रसंग भी बड़ा इस संसार के हिसाब से इंटरेस्टिंग है। प्रसंग था कल जो रुक्मिणी कृष्ण ने लिया भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, और रासलीला के विषय में बड़ा सुंदर समझाया प्रभु जी ने कि किस दृष्टि से देखना चाहिए और कृष्ण को कामी के रूप में ही देखना चाहिए। और अब जो है भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे हैं और रास करने के बीच में ही अचानक रास करते करते गोपियों को छोड़ देते हैं और अब सामने से गायब हो गए हैं कृष्ण और गोपियां उनको ढूंढ रही हैं, ठीक है। तो बोर्ड पर एक श्लोक लिखा है और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि भगवान कृष्ण की एग्जिस्टेंस पर तो हम विश्वास करते हैं कि भगवान थे, कृष्ण थे, लेकिन राधा रानी पर हम इतना विश्वास नहीं करते क्योंकि कुरुक्षेत्र में नहीं दिखाई दे और गीता में कहीं भगवान ने नहीं बोला देखो मेरे साथ खड़ी हैं, मेरे लेफ्ट में खड़ी हैं, है ना। या श्रीमद् भागवतम की अगर हम कथाएं सुनते हैं, जब परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए और सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के अन्य अवतारों की चर्चा करते हैं तो कहीं पर भी श्रीमती राधा रानी का साथ नहीं दिखाई देता, है ना। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं देखिए जो वैष्णवों के मूल ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता, तो इसमें कहीं पर भी क्योंकि श्रीमती राधा रानी की चर्चा नहीं हुई है इसलिए हम राधा रानी के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। और इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन भी हैं अलग अलग नामों से जो केवल और केवल कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण को ही की ही आराधना करते हैं और श्रीमती राधा रानी की कोई चर्चा नहीं होती। उनको लगता है ये काल्पनिक है ना, काल्पनिक जो है पर्सनैलिटी डेवलप की गई। एक नेता थे वो भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, तो मतलब नेता होने के बावजूद क्योंकि नेता का मतलब भी है कि वो लीड कर रहा है सब कुछ, लेकिन अगर जानकारी पूरी ना हो तो कोई कहीं कुछ भी बोल देते हैं। उसको भी यही कहना था कि भाई राधा रानी का एग्जिस्टेंस सुन। तो अगर एक पुराण को कोट करके हम राधा रानी के एग्जिस्टेंस को नहीं मान रहे तो जो अन्य पुराण है उन पुराणों में तो श्रीमती राधा रानी की चर्चा हुई है ना, कृष्ण की चर्चा हुई है, सारे अवतारों की चर्चा हुई है, तो वहां पर दिखाई देता है। फिर क्या कारण है, तो वो आज के श्लोक में थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे पीछे बोल सकते हैं अन्य राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरः जन्नो विहाय गोविंद पीतो यामन यद्रह अन्य उसके द्वारा आराधिता भली भांति पूजित नूनं निश्चय भगवान भगवान हरि कृष्ण ईश्वर परम नियंता यत इतना कि न हमको विहाय त्याग कर गोविंद भगवान गोविंद प्रीत प्रसन्न याम जिनको अन्यतः ले गए रह एकांत स्थान में। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इस विशिष्ट गोपी ने निश्चित ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान पर ले गए। तात्पर्य भी है लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा आगे से शुरू करें तो तात्पर्य बाद में पढ़ लेंगे। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकर्णा सिन्धु दीनबन्धु जगद्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भागवतम के इस पर्टिकुलर प्रसंग में अध्याय इसका है 29 और 30, मतलब 30 में हम बात कर रहे हैं, और प्रसंग है रासलीला जो कि बड़ी फेमस है पूरे संसार भर में और पूरे विश्व भर में लोग इसी को इमिटेट करते हैं। इसलिए हम देखते हैं फिल्में जो भी बनती हैं या वैसे जीवन में जो लोग इमिटेट करते हैं कृष्ण की इस पर्टिकुलर लीला को इमिटेट करते हैं। पर्वत वाले इसको नहीं करते लेकिन इसको करते हैं रासलीला वाले को, क्योंकि उसमें उनको इमिजिएट इंजॉयमेंट का आभास रहता है और पूरा का पूरा जो है फिल्म इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या इन सब चीजों का बेस कहीं ना कहीं ये काम ही है। काम मतलब लस्ट और प्रेम मतलब लव, तो ये दोनों अलग अलग जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार में लस्ट है इसका केंद्र बिंदु और आध्यात्मिक जगत में प्रेम है। जो आध्यात्मिक जगत में है वो प्रेम कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर सभी जितने भी नित्य पार्षद है भगवान के वहां पर नित्य सिद्ध पार्षद वो उसका आस्वादन कृष्ण के साथ करते हैं अलग अलग रसों में कृष्ण के साथ। किन किन रसों में? शांत रस में विभक्त लोग आनंद ले रहे हैं कृष्ण के साथ, दास्य रस में, सांख्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में। और इन सब रसों के अलग अलग भक्त हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आध्यात्मिक जगत में। और बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में एकला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, अर्थात कृष्ण को छोड़कर बाकी जितने भी वहां पर हैं सब के सब कृष्ण के दास हैं। अर्थात कृष्ण ने इन सभी जीवात्माओं की जो रचना की, चाहे जो आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं, चाहे कुछ गलती से भौतिक जगत में आ गए हैं, ये सारे के सारे पार्टिकल ऑफ सर्विस अर्थात इनको सेवा के लिए बनाया। जैसे राजा होता है तो निश्चित रूप से प्रजा का होना जरूरी है, और या राजा के साथ सेवा करने वालों की हमेशा जरूरत पड़ती है। उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि करी आध्यात्मिक और भौतिक, इन सभी में जीवात्माओं को भरा है ना, और जिनको भी प्रकट किया वो सब लोग भगवान के ही अंश हैं और भगवान के ही सेवक हैं। तो अपने एंजॉय के लिए, क्योंकि कृष्ण इज द सुप्रीम एंजॉयर, और इस प्रकृति की रचना करी ताकि वो इसका आनंद उठा सके, क्योंकि कृष्ण कोई निराकार संबंधित चीज नहीं है, कृष्ण कोई मूर्त नहीं है, वो एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल वो है, उनकी छवि है, और कृष्ण के अंदर वो सारी फीलिंग्स हैं जो कि एक परम पुरुष के अंदर होनी चाहिए। इसलिए भगवान को कहा जाता है असीमित, वो अनलिमिटेड है, रसों का भी आस्वादन अनलिमिटेड है, क्वालिटीज भी उनके अंदर गिन नहीं सकते, और उनके रूपों को भी गिना नहीं जा सकता। तो केवल और केवल कृष्ण हम देख सकते हैं, बताया जाता है बाइबल में कि हम लोग द मैन इज इमेज ऑफ गॉड, है ना, गॉड हैज मेड मैन कैसे इज ओन इमेज एज इज ओन इमेज। तो मतलब भगवान दो हाथ के हैं, भगवान के दो चरण भी हैं, भगवान के अंदर फीलिंग्स भी हैं। तो जब मनुष्य भी बनाया गया 84 लाख में उसको सर्वश्रेष्ठ बोला गया, क्योंकि ये भगवान ने अपने जैसा बनाया, और जो इच्छाएं भगवान की हैं, जो फीलिंग्स भगवान की हैं, तो क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, सच्चित आनंद उसी मैटर के बने हैं, उसी मटीरियल के बने हैं, तो हम अंश हैं, वो विभू हैं, हमारे अंदर भी वो गुण हैं, लेकिन क्वांटिटेटिवली अगर हम देखे जाए तो हम लोग बहुत नगण्य हैं। श्री राधा राधिका रमण जी कृष्ण बलराम की। तो इस प्रकार भगवान ने सृष्टि की रचना करी और उन रसों का आस्वादन करते हैं अपने अंतरंग पार्षदों के साथ, नित्य पार्षदों के साथ जो नित्य सिद्ध हैं। लेकिन जिन जीवात्माओं ने भोग वांछा करी, कृष्ण को भूलकर कृष्ण की सुप्रीमेसी को छोड़कर, या उनकी एंजॉयमेंट कि वो सुप्रीम एंजॉयर हैं ये भुलाकर, अपनी को मिली माइनेट इंडिपेंडेंस का जब मिसयूज किया, तो उनको इस संसार में भेजा गया, इस भौतिक संसार में। इसको जेल भी कहा जाता है, और प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रॉपर्टी जेल आगार, अर्थात मैथुन आगार है, अर्थात शैकल्स हैं कैदियों के पास, हथकड़ियां लगी हुई हैं, बार्स के पीछे हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये जो बार्स हैं या जो ये हथकड़ियां हैं, ये काम सुख की हथकड़ियां हैं, ये दिखाई नहीं देती, लेकिन बंधे सारे हुए इससे, पूरा का पूरा संसार इस काम आतुर है, और काम को पूरा करने के चक्कर में, अपने वासनाओं को पूरा करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो कई बार इसको समझना थोड़ा मुश्किल लगता है, जैसे जेल के अंदर है, सब जेल के अंदर है कैदी, और बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बार्स हैं, और वहां पर सबको अंदर रखा जाता है, बाहर नहीं निकल सकते वो लोग, है कि नहीं? लेकिन अगर वो नियमों का ठीक ढंग से पालन करते हैं, जेलर की सारी बात मानते हैं, अपनी सजा पूरी काटते हैं, तो कई बार जेलर उनको जल्दी छुट्टी दे देता है अच्छे व्यवहार के चलते, है ना। उसी तरह जो हम इस भौतिक संसार की जेल में है, ये समझना पड़ेगा हम इस जेल में केवल इसलिए हैं, जो वो वासना हमारे हृदय में है, काम वासना, जो भोग करने की जो इच्छा थी, जिसको हम लोग आध्यात्मिक जगत में जो हम लोगों ने कृष्ण के सम्मुख रखी, तो हम लोगों को उसकी जगह में यहां भेज दिया गया। तो शैकल्स हैं, बाउंड्रीज भी हैं, इस जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन वो क्या है, अव्यक्त रूप में हमको बांधा हुआ है, सटल क्या है वो, काम सुख। इसलिए बोला जाता है कि कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा तारे पले प्रेम आत्म अपने, मतलब आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा बोले काम, इसको काम बोलते हैं, उसको प्रेम बोलते हैं, इसको काम बोलते हैं, मतलब अगर अपने इंद्रियों की इच्छा की हम सुख की चिंता करते हैं इस संसार में, भोग चाहते हैं, तो काम कहलाता है, और कृष्ण की इच्छाओं की पूर्ति को प्रेम कहते हैं। तो जो आध्यात्मिक जगत में है वो सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा भोगे जा रहे हैं, वो पूरी तरह से समर्पित है भगवान को। और जो इस संसार में है वो लोग, क्योंकि अपने को भगवान मानते हैं, अपने इंद्रियों के सुख के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनको यहां पर बार बार आना पड़ता है। लेकिन दयावश भगवान क्या करते हैं, अवतार ले लेकर आते हैं फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए, लोगों को यह समझाने और सिखाने के लिए कि काम सुख के चलते तुम इस संसार में पड़े रहोगे जब तक कि तुम मेरी शरण में नहीं आओगे। और उनकी शरण में डालने के लिए भगवान नए नए अवतार लेते हैं, प्लस चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वो चीज देते हैं जो इससे पहले नहीं दी गई। उन चार मुख्य रसों को, जो पांच रस बता रहे हैं, इन मुख्य रसों को जिसके कभी चिंतन भी नहीं हुआ, इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं होता, लेकिन महाप्रभु आकर वो प्रेम हम जैसे जीवात्माओं को दे जाते हैं जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं था। और कैसे प्राप्त होगा, उसका माध्यम बताया, हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जो सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, जिसको भुला चुके थे, इस हरि नाम के द्वारा उसको अनकवर किया जाएगा, अर्थात दोबारा से इसको प्रेम को हृदय में डाल दिया जाएगा, फिर हम जा सकते हैं। तो जब भक्त लोग इस संसार में हरि नाम के द्वारा भक्ति करने का प्रयास करते हैं, कीर्तन करने का प्रयास करते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेते हैं, प्रामाणिक स्त्रोत्रों से सुनते हैं, तो धीरे धीरे जब वो भक्तों के संग में आते हैं, उनके अंदर श्रद्धा होती है तो भक्तों के संग में आते हैं, फिर भजन क्रिया प्राप्त करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भजन क्रिया मिलती है, फिर अनर्थों की निवृत्ति होती है। कौन से सबसे बड़ा अनर्थ है, जिसकी वजह से हम संसार में भौतिक इच्छाएं काम सुख। तो हरि नाम लेते लेते धीरे धीरे क्या होता है, उनका हृदय शुद्ध होने लगता है, अनर्थों को की जो काम वासना उनके हृदय से निकल जाती है। कई लोगों को लग सकता है कि ये वासना तो बिल्कुल नहीं निकल सकती, बहुत मुश्किल है, वृद्धावस्था तक नहीं निकलती लोगों के हृदय से, और नाना प्रकार के योजनाएं बनाकर मेडिसिन का यूज कर भी वो भोगना चाहते हैं संसार के अंत समय तक भी। तो ऐसा क्या है, तो फिर पता चलता है कि जब लोग हरि नाम लेना शुरू करते हैं, उनके कर्णों के छिद्रों से जब कृष्ण प्रवेश करते हैं हृदय में, तो उनके हृदय जो संतप्त हैं उस दावानल से, उस अग्नि से, काम अग्नि से, जो आतुर है हमेशा इस संसार में भोग के लिए, धीरे धीरे वो समाप्त होना शुरू हो जाती है, वो अग्नि बुझ जाती है और वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर आते हैं जहां अनर्थों की निवृत्ति होकर वो निष्ठा के स्तर पर आ जाते हैं। और निष्ठा मतलब एक कन्विक्शन हो जाता है कि यस, ये पाथ बिल्कुल ठीक है और मुझे इसको पकड़ना है। मटीरियल डिजायर्स ऑलमोस्ट गॉन, और उसके बाद रुचि उत्पन्न होती है कृष्ण के नामों में। अब इस संसार में रुचि नहीं, जैसे वैष्णव बोलते हैं, जब मेरे हृदय में कभी किसी स्त्री को देखकर या स्त्री का किसी को पुरुष को देखकर इस प्रकार की काम वासना अगर किसी शुद्ध भक्त के हृदय में जब जागृत होती है, तो उस विचार पर वो थूकता है कि मैंने कैसे अपने हृदय को पोल्यूट कर दिया, जिसमें कृष्ण को रहना चाहिए था उसमें ऐसा गंदा विचार कैसे आ गया, कृष्ण से अलग होकर मैं इस प्रकृति को कैसे भोगूं। जैसे एक धनुर्धर एक भक्त थे, जो नम्रजय के शिष्य थे, जब वो एक वैश्य से बहुत आकर्षित थे और साउथ इंडिया में भगवान को बाहर लाकर जो है पालकी निकला करती है, तो जब पालकी निकल रही थी सब लोग सड़कों पर थे, जय घोष चल रहा था, अचानक उसकी नजर पड़ी वैश्य पर, वो बहुत ही सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देखकर वो बहुत मोहित था, सारी दुनिया भगवान की तरफ देख रही है, उनकी जय घोष कर रही है, लेकिन उसकी नजर उस वैश्य की तरफ थी, उसके आकर्षण के प्रति पूरी तरह से सोल्ड आउट, मनसा वचसा पूरी तरह से वो उस सुंदरता उसकी निहार रहा था। तो जब पालकी जा रही थी, वो पालकी निकल भी गई, रामोजनाचार्य को देखा कि ये व्यक्ति किस प्रकार एक वैश्य की तरफ देख रहा है, मतलब भगवान साक्षात यहां से निकल रहे हैं लेकिन इसका आकर्षण इस स्त्री के प्रति है। तो उसको कहा, उसके पास गए और कहा कि तुम भगवान को छोड़कर इस स्त्री से आकर्षित हो, ऐसा क्या आकर्षण है इस पांच तत्वों से बने शरीर में। कहते आपको नहीं पता गजब की सुंदरता है, मैंने आज तक इससे सुंदर नहीं देखा कुछ भी, इसलिए मैं अपनी नजरें उस आंखों से हटा नहीं पा रहा हूं। कहते यहां से साक्षात भगवान निकल रहे हैं, लेकिन तुम्हें भगवान, कहते नहीं मुझे इससे ज्यादा सुंदर कुछ नहीं लगा। कहते अगर मैंने इससे ज्यादा सुंदर तुम्हें कुछ दिखा दिया तो, कहते अगर आपने मुझे इससे ज्यादा सुंदरता किसी में दिखा दी तो फिर मैं इसको छोड़ूंगा, मैंने आज तक इससे ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं देखी। कहते ठीक है, कल तुम सुबह आना इस्कॉन मंदिर में, पंजाबी बाग। कहते ठीक है, कितने बजे? कहते मंगला आरती आना। कहते ठीक है, सुबह मंगला आरती, लेकिन गेट लगे हुए थे, दूसरी तरफ से घूमकर आया, है कि नहीं? और अगले दिन रामानुजाचार्य ने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, आज मैंने उस कामी व्यक्ति को, उस कामी पुरुष को, जो एक वैश्य की सुंदरता से, जिसका आकर्षण बढ़ा हुआ था और जो आपको भी नेग्लेक्ट कर रहा था, मैंने उसको बुलाया आपके दर्शन के लिए। और आप तो परम सुंदर हैं, आपकी सुंदरता से पूरा जगत मोहित है। क्या आप एक उस धनुर्धर को मोहित नहीं कर सकते अपने से? तो वो आ गया धनुर्धर, बताइए किससे मिलना है, कौन है आप और सुंदरी? उसने कहा आइए मैं दिखाऊं। दर्शी दर्शन ऊपर खुले, कहते ये है भगवान श्री श्री राधा राधे करवा जी, इनका कीजिए दर्शन। और भगवान ने फिर अपनी आंखों से एक चमक दिखाई उस व्यक्ति को, और वो उस व्यक्ति का पूरा काम, जन्मों जन्मों का जो काम था वो एक क्षण में समाप्त कर दिया। और कृष्ण को निहारते निहारते उसकी आंखों से आंसू निकलने, कहते इससे ज्यादा सुंदरता नहीं देखी। और वो पूरी तरह भगवान से मोहित हो गया और भक्त बन गया रामाचार्य का। और बाद में पूरी तरह से तन मन धन से उसने परिवार के साथ सेवा करी भगवान की। तो कृष्ण जो है हमारे काम को समाप्त कर देते हैं। तो जिनके अंदर हृदय में रुचि उत्पन्न है भगवान के नामों में, जो कृष्ण से आसक्त हो चुके हैं, फिर उनका मन, उनका उनकी बुद्धि, उनके विचार, उनके जो क्रियाकलाप हैं, वो इस संसार के प्रति आकर्षित नहीं होते। अगर होते भी, अगर कुछ कर भी रहे हैं तो एक ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं कि मुझे करना है, मेरा प्रारब्ध है, जब तक मेरा प्रारब्ध है तब तक शरीर संसार में रहना है तो मुझे करना है। लेकिन उसका मन, उसका भाव पूरी तरह से कृष्ण में लगा रहता है। आसक्ति के बाद भाव जैसे स्टेज पर जब व्यक्ति पहुंचता है, जब कृष्ण का साक्षात दर्शन करता है और कृष्ण कई बार अपने को ओझल कर लेते हैं, कभी फिर प्रकट करते हैं, उसके अंदर अश्रु प्रवाह होता है, वो कृष्ण को फिर देखना चाहता है, अब उसकी संसार में कहीं और रुचि नहीं रहती। और प्रेम की अवस्था में पहुंचने के बाद उसको यह पता चलता है कि कृष्ण से मेरा क्या संबंध है, आध्यात्मिक जगत में मेरा क्या स्वरूप है, मेरे क्या वस्त्र है, मेरा क्या नाम है, मेरा क्या घर है, और किस प्रकार उस माधुर रस का आस्वादन में किस रूप में कर पाऊंगा। तो जिनको यह पता चलता है, जो इस प्रकार कृष्ण से मोहित रहते हैं, वो लोग आध्यात्मिक जगत में एंटर कर पाते हैं। और फिर जो कल बात चल रही थी रासलीला की, तो आध्यात्मिक जगत में जब भगवान श्री कृष्ण को रास करना होता है तो वो रास कौन लोग करते हैं? जैसे श्री राम जब अवतार लेकर इस धरा पर थे और दंडकारण्य के वनों से और कई अलग अलग जगहों से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो किन्नों ने देखा, ऋषि मुनियों ने, जो भाव और प्रेम के स्तर पर थे, भगवान को देखते ही उनका आलिंगन करना चाहते थे, उनको अपना सर्वोच्च निछावर करना चाहते थे, उस भाव थे, उस गोपी भाव तक पहुंच चुके थे। तो भगवान राम ने कहा, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम एक पति पत्नी वर्ता रूप में आया हूं, अब मैं अगला जो हो रूप होने वाला है मेरा कृष्ण, तो मैं उसमें तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तो इस प्रकार वो सारे ऋषि मुनि जो उस स्तर पर थे अगले जन्म में गोपियों के गर्भ से प्रकट हुए, क्योंकि यहां से भक्ति करने के बाद डायरेक्ट कोई भक्ति में ठाकुर जी बताते हैं सीधा गोलोक धाम नहीं एंटर करेगा, उससे पहले उसको भाव और प्रेम के स्तर पर आने के बाद जब पता चल जाता है मैं कौन हूं, मेरा क्या नाम है, मेरी क्या स्थिति है, तो उसको भगवान श्री कृष्ण की अब जहां लीला शुरू हो रही है, जिस भी ब्रह्मांड में कृष्ण अब प्रकट हुए, तो उन कृष्ण की लीला में जो गोपियां उपस्थित हैं उनके गर्भ से प्रकट होते हैं और पर्टिकुलर उस भाव का अनुकरण करते हैं, चाहे वो वात्सल्य भाव हो, चाहे वो माधुर्य भाव हो, चाहे वो साख्य भाव हो। अगर किसी का भगवान से गोपबाल का मित्रता का व्यवहार है तो वो उस पराकाष्ठा तक पहुंचने के बाद फिर किसी गोपी के गर्भ से आता है, प्रकट होता है और उस भाव को फलीभूत करता है। और फिर वहां पर लीला होती है, ये लीला कौन सी, जैसे अभी 5000 साल पहले वृंदावन में हुई। तो उन सब गोपियों के साथ कृष्ण ने फिर क्या किया, रास किया। गर्ग मुनि जी बताते हैं कि कृष्ण ने अपने को प्रकट किया जितनी गोपियां थी और मध्य में राधा जी के साथ थे, इतनी सारी गोपियों के साथ रास हुआ है। इस संसार के लोग इस रास लीला को गलत ढंग से देखते हैं, उनको लगता है कृष्ण करे तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, ये कैसे हो सकता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि भैया कृष्ण ने इतनी सारी गोपियों के साथ किया, 16108 रानियों के साथ विवाह किया, और अगर हम कर लेते तो क्या दिक्कत है। वैसे तो कोई नहीं सोचता इतना, क्योंकि उसको मालूम है कि एक ही इतनी भारी पड़ जाती है तो दो नहीं सोच सकता, तीन नहीं सोच सकता, चार नहीं सोच सकता। तो अगर वाकई कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की भी कोशिश करता है तो भी जो है उसको इतना डरना पड़ता है, इतना कृष्ण किसी, कृष्ण को किसी का डर नहीं। कृष्ण क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कल के लेक्चर में रुक्मिणी कृष्ण बता रहे थे कि कृष्ण अगर रास लीला कर रहे हैं तो गोपियों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, भक्तों की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। गोपियां व्रत रखती थी 30-30 दिन का कात्यायनी व्रत, और कहते थे कि कृष्ण हम आपको पति के रूप में चाहती हैं, हम चाहती हैं आप हमारा आलिंगन करें, आप हमारे को भोग करें। लेकिन जैसे भोग की बात आती है, आलिंगन की बात आती है, क्योंकि हमने इस संसार में लोगों को आलिंगन करते देखा है, इस संसार में हम लोगों ने फिल्मों में ये सब चीजें देखी, तो हमें लगता है ऐसे ही आलिंगन होता होगा या ऐसे ही भोग होता होगा। नहीं नहीं नहीं, भगवान का भोग करने का मतलब ये नहीं। जैसे कुबजा को भगवान ने जब सीधा कर दिया, बिल्कुल पहली सर्जरी करी उनकी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप आइएगा मेरे पास, मेरे घर आइएगा। तो भगवान गए उनके घर और पूरी तरह से काम आतुर थी कि कृष्ण जो है मेरे घर आ रहे हैं, कृष्ण इतने सुंदर इतने आकर्षक, तो मैं किस तरह से कृष्ण को पाऊं। भगवान श्री कृष्ण साथ में बैठे थे और केवल उनको छुआ और छूने मात्र से ही उसका सारा का सारा काम समाप्त। हम सोच ही नहीं सकते कि क्यों किसी को छूने से या किसी को देखने से काम समाप्त हो सकता है। धनुर्धर का भगवान को देखने से काम समाप्त हो गया। तो हम उन क्रियाओं को ना सोचें जो इस संसार में लोग करते हैं। भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट करना था तो लक्ष्मी जी की हेल्प नहीं ली, उन्होंने केवल अपने नाभि से कमल का पुष्प निकाला, ब्रह्मा जी को पैदा कर दिया। और ब्रह्मा जी ने अपने मन से इतने सारे ऋषियों को पैदा किया, प्रजापति को पैदा किया ताकि चले निकले आगे और आप संख्या बढ़ाए। उसके बाद धीरे धीरे हम देखते कि अब कलयुग के लोगों को इस प्रकार की चीजें करनी पड़ती है। पहले सब चीज मानसिक इच्छाओं से हो जाता था, केवल सोचने मात्र से हो जाता था। तो ये सब चीजें भगवान ने जब गोपियों के साथ रास शुरू किया, कितनी प्रकार की गोपियां, भगवान को चामर करने वाली, भगवान को के रूप सज्जा करने वाली गोपियां, कुंजवासी जो कुंज में निवास करने वाली गोपियां, यमुना के किनारे निवास करने वाली, हर तरह की युद्धेश्वरियां। जैन धर्म में भक्तिनाथ ठाकुर जी बताते हैं यूथ, जैसे हमारे यहाँ इस्कॉन यूथ फोरम है ना, तो ऐसे यूथ को मतलब होता है बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ डिवोटीज ऑफ गोपीज। तो वो गोपीज जो है एक एक यूथ में और उनके नीचे कितने सारे यूथ सैकड़ों की संख्या में, और इस प्रकार सारे के सारे कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर। तो जब रास हुआ तो उन सबको बुलाया गया, हर व्यक्ति अपने यूथ ग्रुप के साथ वहां पहुंचे रास करने के लिए, और रास करना शुरू किया। अलग अलग वनों में गए रास करते करते, कभी फिर से यमुना के अंदर चले जाते, फिर बाहर निकलते, फिर नाच, फिर अगले वन में, फिर अगले वन में, इस प्रकार हर 12 वनों में भगवान भ्रमण कर रहे हैं गोपियों के साथ रास करते करते। और अचानक क्या हुआ, पिछले चैप्टर से बोल रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपियां अपने पर गर्वित हो उठी, और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा। करोड़ों गोपियां, 30 करोड़ गोपियां नृत्य कर रही हैं और भगवान कृष्ण भी सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। अचानक गोपी के मन में क्या भाव आया, हर एक गोपी के यहां लिख रहे हैं, यह आया कि मैं पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ क्या हूं, गोपी हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। बड़ा सौभाग्य माना अपना, थोड़ी सी गर्वित हुई, लेकिन कृष्ण को गर्व पसंद नहीं है, चाहे कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। कई बार होता है जब नए भक्त बनते हैं तो सब लोगों को लगता है अच्छा फिलॉसफी मालूम पड़ गई, आज तक को सुनी नहीं थी कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। फिर पता चलता है यहां पर लेक्चर सुन सुन के सारा संसार आहार निद्रा भय मथुन कर रहा है, पशु की भांति वो दो पैर वाला जानवर है, और इवन जो कोई भक्ति भी कर रहा है वो देवी देवताओं की कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो वो तो पिछले युगों का था, देवी देवताओं की भक्ति कर रहा था, कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्र ने कहा है कि देवी देवताओं की भक्ति करके कोई ये सोचे कि मैं धाम चला जाऊंगा मुक्त हो जाऊंगा, तो ये ठीक उसी प्रकार है कि समुद्र में है कोई व्यक्ति और ये सोचे कि मैं कुत्ते की पूंछ पकड़कर ये समुद्र पार कर जाऊं। तो जब भक्तों को पता चलता अरे देवताओं से भी कुछ नहीं होने वाला, और इतने सारे अवतारों में भी हम कृष्ण से आकर्षित हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग तो वृंदावन वाले कृष्ण, जो काले सांवले घुंघरालू बाल वाले पीतांबरी ओढ़े, उस कृष्ण से आकर्षित हैं। हमको तो विष्णु का चार भुजाओं का रूप भी आकर्षित नहीं करता। तो व्यक्ति के अंदर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, आ जाता है कि हम कृष्ण के भक्त हैं, है ना, हम कृष्ण के भक्त हैं। अरे तुम दो पैर वाले हो, पैर तो सर आपके भी दो हैं, बट हमारे पैर विशेष हैं, आप दो पैर, आपके जो दो पैर हैं, आपकी जो क्रियाएं हैं वो उनसे मिलती हैं जो चार पैर वाले हैं, इसलिए आप दो पैर होते हुए भी चार पैर वाले हो, इसको फील होता है, क्योंकि मैं जो हूं ऐसी फिलॉसफी अपना रहा हूं। और देवताओं की भक्ति करने वालों को भी कहते हैं तुम कुछ नहीं, हम, तो इस प्रकार का गर्व आ जाता है। लगा हुआ है लाइन में, हरिनाम ले रहा है, श्रवण कर रहा है, धीरे धीरे पवित्र होगा। इसी तरह कई बार लोगों को लगता है स्पॉन्सर से जुड़ना भी स्टेटस सिंबल है, तो कई बार लोगों को लगता है 8-10 कॉलोनी वालों को दिखाते हुए जाता है बड़ा छतरप लगाकर, देखिए जी आज हम कहां जा रहे हैं, स्पॉन्सर जा रहे हैं। या जैसे लाइफ पार्टनरशिप कार्ड घर पर आता है, हम तो मेंबर है जी, हम तो मेंबर है। पुलिस वालों को भी दिखाते हैं, अगर चालान कट रहा हो तो सर मैं तो मेंबर हूं सर, मैं लाइसेंस लेके नहीं चल रहा बट लाइफ मेंबर कार्ड लेके चल रहा हूं। तो व्यक्ति सुपीरियर कॉम्प्लेक्स फील करता है। तो इसी तरह भगवान को पसंद नहीं है, इंद्र ने किया, देवताओं ने जब जब गर्व किया अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो कि भगवान के द्वारा दिया गया है, तो भगवान ने उनका भी गर्व चकनाचूर किया। अब यहां पर गोपियां नृत्य कर रही हैं कृष्ण के साथ और अपने को बड़ा सौभाग्य मान रही हैं। तो कृष्ण ने क्या किया, त्याग दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अब क्या किया, हर एक गोपी मान रही थी कि हाँ कृष्ण जो है हमारे साथ, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनके इस गर्व से उभारना चाहा, उनको इस गर्व से उभारना चाहा कि गर्व हो गया नहीं चाहिए, तो कहा उनको उभारना चाहा और उन पर और अधिक अनुग्रह करना चाहा। अर्थात जब कृष्ण किसी का गर्व तोड़ते भी हैं तो उसको और अनुग्रह होता है कि नहीं। हमारा कोई गर्व नीचे कर दे, कोई क्रश करे, कोई हमारी ईगो को, तो हमें लगता है गर्व नहीं है, इसने हमारे को हमारा भला नहीं चाहा, है ना, हम तो उसके साथ कुछ कर दें क्योंकि इसने हमारे को कैसे कुछ बोल दिया। लेकिन भगवान जो है यहां पर अपने भक्तों का गर्व नहीं आने दे रहे, और क्या करा, उनका और भला करना चाहा, और क्या करा, तुरंत अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, अचानक गायब, सबके साथ एक ही कृष्ण थे, हाथ पकड़ के अभी तो नाच रहे थे, अभी तो बस ऐसे से घूम रहे थे, ऐसे से स्टेप ले रहे थे, अचानक कृष्ण कहां गए, सारी गोपियां परेशान। और उसके बाद अब अगला चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे थे आज, इसमें शिशुकवाच शिवदेव गोस्वामी ने कहा कि जब भगवान कृष्ण इस तरह एकाएक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें ना देख सकने के कारण अत्यंत व्यथित हो उठी, जिस तरह हथनियों का समूह अपने नर के बिछुड़ जाने से खिन्न हो उठता है। अभी देखिए आध्यात्मिक जगत की जो फीलिंग्स हैं, हम भौतिकवादी लोगों को समझाने के लिए यही की चीजें समझाई जाती हैं, क्योंकि हाथी हमने देखा है, भगवान श्री कृष्ण के सुंदर नयन कमल सदृश है, नाभि कमल, चरण कमल, हर चीज, क्योंकि संसार में सबसे अच्छा फूल, सबसे अच्छी सुंदरता कमल की है, तो कमल के सदृश सारी चीजें बताई जाती है। तो यहां पर जब कोई एग्जाम्पल भी दिया जाता है तो इसी संसार का दिया जाता है ताकि हम लोग उसको देख सके, दूसरे संसार की चीजें तो हमें पता नहीं होगी। अगर बोले उस परिजात फूल की तरह है, अब परिजात आपने देखा ही नहीं है, है ना, तो कैसे समझेंगे कैसा परिजात, चौरस है, कैसा है, रोटी जैसा है, कैसा फूल है। तो यहां के फूलों की, यहां की उपमा दी जा रही है, उसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि शायद जंगलों में कभी किसी ने हाथी को देखा हो तो ये इसलिए हाथी की उपमा दी जा रही है। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही गोपियों के हृदय, उनकी चाल ढाल तथा प्रेम में मुस्कान, उनकी कौतुकपूर्ण चितवन तथा मोहने वाली बातों तथा अपने साथ की जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत हो उठे। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन हुए गोपियां उनकी विविध दिव्य लीलाओं और चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। कृष्ण से जब विरह में दूर होती थी गोपियां, तो जब उनका स्मरण होता था तो बहुत व्यथित हो उठती थी, लेकिन फिर से कृष्ण का क्योंकि लीलाएं याद आती थी, कृष्ण हमारे साथ ये किया, कृष्ण ने ऐसा बोला, वो ऐसे चलते थे उनके मोर पंख, तो फिर से वो कृष्ण का संग करने लगती थी, फिर से वो विरह में आने लग जाती थी कई बार। तो अब उनकी चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी, क्या चेष्टाएं, चूंकि प्रेममयी प्रिय गोपी गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थी, अतः कृष्ण गोपियों के शरीर के चलने तथा हंसने के ढंग, कृष्ण के इन चलने और हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी तथा उनके अन्य विलक्षण गुणों का अनुकरण करने लगे। उनके चित्वन में गहरी डूबी हुई तथा उनकी लीलाओं का स्मरण कर उन्मत्त हुई गोपियों ने परस्पर घोषित कर दिया कि मैं ही कृष्ण हूं। इतना कृष्ण के भाव में रम गए कि अब कहती मैं ही कृष्ण हूं, अब मैं कृष्ण की तरह कुछ करके दिखाऊंगी। आप गोपियों का भाव देखे, कितना अधिक कृष्ण के प्रति जो है वो पूरी तरह से वो थी कि अब वो अपने को कृष्ण मानने लगी। जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाते हुए गोपियों ने पगला गई है, स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें वृंदावन के पूरे जंगलों में खोजा, यहां तक कि वृक्षों से ही भी उन कृष्ण के विषय में पूछा कि जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश के भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित है, लेकिन अब कहां है। गोपियों ने कहा हे वृक्ष, हे प्लक्ष, हे न्योग्र, क्या तुमने कृष्ण को देखा है, वह नंद नंदन अपनी प्रेम भरी मुस्कान तथा चेतन से हमारे चितों को चुरा कर चला गया है। हे गुरबरक वृक्ष, हे अशोक, हे नागकेसर, हे पुन्नाक तथा चंपक, क्या इस रास्ते से होकर बलराम का छोटा भाई गया है, जिसकी हंसी समस्त अभिमान करने वाली स्त्रियों के दर्प को कम करने वाला है, हटाने वाला है, हरने वाला है। हे अत्यंत दयालु तुलसी, तुमने तो गोविंद के चरण इतने इतने प्रिय हैं तुम्हें, क्या तुमने अपने को पहले और भोरों के झुंड में घिरे उन अच्युत श्री कृष्ण को देखा है, जाते हुए देखा है क्या? इस प्रकार से वे गोपियां परेशान होने लगी। माता पृथ्वी को बोला उन्होंने कि केशव के चरण कमलों का स्पर्श पाने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या तुमने की, जिससे उत्पन्न परम आनंद से आपने शरीर आपके शरीर में रोमांच हो आया। इस अवस्था में आप अतीव सुंदर लग रही हैं, क्या भगवान की इसी प्राकट्य के समय आपको ये भाव लक्षण प्रकट हुए, या फिर और पहले जब उन्होंने आप पर वामन देव के रूप में चरण रखे, या अन्य अवतार में आए, या आपका आलिंगन किया वराहदेव के रूप में, तब भी इतने सिम्टम्स आते थे? पूछने लगी इस प्रकार गोपियां, हिरणियों से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है, फिर कहा कि हम देख रही है कि तुम झुक रहे हो वृक्षों को। बोला, क्या जब राम के छोटे भाई इधर से गए, जिनके पीछे पीछे राम का मतलब बलराम से है, हर जगह बलराम के हाथ राम बोला जाता है, कि पीछे पीछे गले में सुशोभित तुलसी बंजरी की माला के चारों ओर उन्मुक्त भवरे मंडरा रहे थे, और उन्होंने अपने स्नेहपूर्ण चिंतन से तुम्हारे प्राण तुम्हें प्रणाम स्वीकार किया। इसी तरह ये सारी चीजें पूछी जा रही है। आगे जो है आज के श्लोक में, इस अवस्था में पहुंचने से पहले अब जो है वो कृष्ण को की श्रीमती राधा ने को लेकर गायब है, ठीक है, क्योंकि भागवतम में शुभदेव गोस्वामी नहीं बोल रहे इस बात को, लेकिन क्योंकि गायब है अब कहां है तो बताते वो अन्य वनों की तरफ चले गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर श्रीमती राधा रानी के साथ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की रूप सज्जा कर रहे हैं, केशों को क्या कर रहे हैं, संवार रहे हैं। एक चित्र भी आपने देखा होगा कई बार, यमुना के किनारे भगवान कृष्ण बैठे हुए है कि नहीं, देखा आपने, श्रीमती राधा रानी उनके दोनों चरणों के बीच में और कृष्ण उनके केश सज्जा कर रहे हैं। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी ने भी ये किया और क्या किया, कृष्ण के केश सज्जा कर और उसको बोला वक्रता। वक्र मतलब अष्ट वक्र जब बोलते हैं तो अष्ट मतलब आठ जगहों से मुड़े हुए, वक्र का मतलब मुड़ा हुआ। तो श्रीमती राधा रानी जब कृष्ण की केश सज्जा कर रही हैं तो वक्रता बना रही हैं, अर्थात उनके बालों को करली कर रही हैं और घुंघरालू का बाल, और क्या कर रही है, कृष्ण के सुंदर मुखमंडल के सामने लेकर आ रही है कुछ बालों, ये सब चल रहा है। अचानक कृष्ण को गोपियों का चरणों के नुपुरों की आवाज आने लगी, क्योंकि गोपियों ने क्या किया, उन्होंने कहा आधी इधर से जाओ, आधी इधर से जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, अलग अलग ढंग से बचाओ। तो गोपियां इस प्रकार कृष्ण को ढूंढ रही थी अलग अलग जगहों पर, तो सारे जब ढूंढते ढूंढते उनको कहीं जगह कृष्ण के चरण नजर आए, और चरणों में क्या निशान है भगवान के, कमल का निशान है और अमृत के पॉट्स हैं, उसमें रेखा खींची हुई है, और ये सब चिन्ह उनको दिखाई देने लगे जमीन पर, और एक चिन्ह नहीं, श्रीमती राधा रानी के चरण कमल भी दिखाई दे रहे। सुखदेव गोस्वामी इसकी चर्चा नहीं कर रहे और श्रीमती राधा रानी का नाम भी डायरेक्ट नहीं ले रहे, क्या कह रहे हैं, तात्पर्य में श्री गुवाजी कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की व्याख्या है कि आराधता शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए आया है। अब एक वैष्णव शुद्ध भक्त शुभदेव गोस्वामी के हृदय को जान सकता है, इस पर्टिकुलर श्लोक को जान सकता है, इसलिए क्या कर रहे हैं, वो बताने के प्रयास कर रहे हैं कि ये जो गोपियों ने चार चरण कमल देखे, चार साइन देखे थे ना, चार पर उनके, तो समझ गए कि इनके साथ कृष्ण के साथ कोई अन्य गोपी और है, और वो कौन है गोपी, यहां पर शुभदेव गोस्वामी डायरेक्ट नाम नहीं ले रहे, उसका भी भाव पता चलेगा क्यों नहीं ले रहे। उनकी टीका है कि शुभदेव गोस्वामी ने उनका नाम गुप्त रखने का भरसक प्रयास किया था, मतलब वो चाहते नहीं थे कि मैं राधा रानी का नाम लूं, लेकिन आराधिता शब्द बोलकर राधा रानी का नाम भी ले लिया, श्रीमती राधा रानी का नाम है, डायरेक्ट नाम नहीं है, उस तरह से आराधिता शब्द बोला, क्योंकि वो आराधना करती है श्री कृष्ण की हमेशा, इसलिए उनका नाम आराधिता भी है, या उनका आराध्य उनको उनकी आराधना की जाती कृष्ण के द्वारा, इसलिए उनका आराधिता है, या सारी गोपियों के द्वारा वो वर्षीय बल है। तो यहां पर आराधिता शब्द इस्तेमाल कर ही दिया, वैसे नहीं करना चाहते थे, भरसक प्रयास किया कि ना करो, क्यों, क्योंकि शुक जो है शुकदेव गोस्वामी वो श्रीमती राधा रानी के क्या है, सर्वेंट है, किस रूप में, तोते के रूप में अध्यात्म जगत, और श्रीमती राधा रानी से जुड़े भक्त जो है वो श्रीमती राधा रानी के अंतरंग पार्षद हैं और उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं, उनको कृष्ण से कोई लेना देना नहीं, वो कृष्ण की भी अगर बात करेंगे तो सेवक के रूप में करेंगे, अन्यथा वो श्रीमती राधा रानी से जुड़े हुए। कुछ गोपियां हैं जो कृष्ण से ही जुड़ी हुई, और मंजरियां भी श्रीमती राधा रानी की है। वो कहते हैं राधा और कृष्ण का जब मिलते हैं मिलन, उनको मिलाना चाहती हैं, तो उससे जितना श्रीमती राधा रानी को आनंद मिलता है, या कृष्ण के आनंद से 1 करोड़ अधिक राधा रानी को मिलता है, और राधा रानी के आनंद से करोड़ों गुना मंजरियों को प्राप्त होता है। तो जो जिससे प्रेम करता है, जो मंजरियां हैं या यशो के इत्यादि राधा रानी के सर्वेंट हैं, वो श्रीमती राधा रानी का प्रसंग या उनकी बात छेड़ते ही वो उनके भाव में चले जाते हैं। और अगर उनके भाव में चले जाते शुभ श्रीमती राधा रानी की चर्चा कर तो शायद आगे की कथा करना मुश्किल हो जाता। और अगर आगे की कथा नहीं होती तो हमारे जो परीक्षित महाराज थे वो फंस जाते। 7 दिन नहीं होते भी पूरे ना, 7 दिन तक का कोर्स था उनका, 7 डे सेशन कोर्स। तो वो जो चल रहा था उसमें शुभदेव वासी में रुक जाते और फिर वो कथा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने इनडायरेक्ट वे में आराधिता शब्द इस्तेमाल किया, और अन्यथा और कौन गोपी होगी कृष्ण के साथ। फिर क्या हुआ, कृष्ण जब बैठे थे, गर्ग पुराण में लिखा है, तो ये सब चल रहा था आपस में, अचानक नुपुरों की आवाज सुनी, क्योंकि गोपियां फॉलो कर रही थी चरण चिन्हों को। और फिर बात करते करते उन्होंने कहा देखो और गोपियां आ गई इस तरफ, हमें लगता हमें दूसरी जगह चले जाना चाहिए। राधा रानी ने कहा मैं तो रानी थी, रानी, और सुबह से तुम मुझे बड़ी देर से चला रहे हो, एक वन से दूसरे वन, इधर से वन, और जब से गोपी से छूटे तो और इधर उधर लेकर आ गए, तो मेरी स्थिति यह है कि मैं चल नहीं सकती, मैं अब चल नहीं सकती। तो क्या हुआ, कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को उठा लिया। अब गोपियां जो चरण कमल देख रही हैं उनको 4 चिन्ह तो दिखाई दे रहे हैं, तो क्या हुआ, अब उनको दिखाई दे रहे कि अब खाली 2 पैर है। अब 2 पैर हैं तो वो कह रही हैं, क्या चिंतन कर रही हैं, हे बालाओं गोविंद के चरण कमल की धूल इतनी पवित्र है कि ब्रह्मा शिव इत्यादि लोग अपने सर पर लेना चाहते हैं, और उस विशिष्ट गोपी के ये चरण चिन्ह हमें अत्यधिक विचलित कर रहे हैं। समस्त गोपियों में से केवल वही एकांत स्थान पर ले जाए गई जहां वे कृष्ण के अधरों का पान कर रही हैं। देखो ना हमें यहां पर उनके पद चिन्ह नहीं दिख रहे, अब इधर नहीं दिख रहे। अब क्या होगा, क्या उन्होंने बोला, स्पष्ट है कि घास तथा खुश उनके पांव के कोमल तलवों को कष्ट पहुंचाना चाह रहे हो, अतः प्रेमी कृष्ण ने क्या क्या हो उनको उठा लिया। बिल्कुल ठीक है, अच्छा कैसा, कृष्ण ने यहां उठा लिया उनको। उधर कृष्ण राधा रानी बोल रही है मैं नहीं चल सकती, तो वो चिन्ह देख रही हैं कि 2 पैर नजर आ रहे, 4 थे 2 आ रहे हैं। मेरी प्यारी गोपी जरा देखो ना किस तरह इस स्थान पर कामी कृष्ण ने कृष्ण के पद चिन्ह पृथ्वी में गहरे धस गए हैं, बिकॉज वेट डबल हो गया है ना, गहरे धस गए हैं, और अपनी प्रियतमा के भार को वहन करना अवश्य ही उसके लिए कठिन हो रहा होगा है ना। और यहां तक, यहां पर तो उस चतुर छोरे ने कुछ फूल चुनने के लिए उसे नीचे रख दिया होगा, तो कहीं दिखाई दिया होगा फिर दोबारा चरण, अब ऐसा कर लिया होगा। जरा देखो ना किस तरह कृष्ण, प्रिय कृष्ण ने यहां पर अपनी प्रिया के लिए फूल चुने हैं, यहां उनके पांव के अगले हिस्से पंजे किस प्रकार देखो जमीन पर गड़े हुए, क्योंकि फूलों तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने पंजों का बल प्रयोग किया होगा। देखिए किस प्रकार खोल गई गोपियां। भगवान कृष्ण ने उस गोपी के साथ भोग विलास किया, यद्यपि वे अपने आप में तुष्ट रहने वाले हैं, पूर्ण होने के कारण केवल भीतर ही भीतर आनंद मग्न होते हैं। इस तरह विरोधाभास के द्वारा उन्होंने सामान्य कामे पुरुषों और निष्ठुर स्त्रियों की तुष्टता का प्रदर्शन किया। वो किस तरह से सोच रहे हैं, कृष्ण के कल रास काम पूरा समझ चुके, पढ़ चुके। जब गोपियां पूर्णता भ्रमित मनो से घूम रही थी तो उन्होंने कृष्ण लीलाओं के विविध चिन्हों की ओर संकेत किया। यह विशिष्ट गोपी जिसे कृष्ण अन्य युवतियों को त्याग कर एकांत जंगल में ले गए थे अपने को सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझने लगे, उनके बीच उसने सोचा मेरे प्रियतम ने उस अन्य समस्त गोपियों का तिरस्कार कर दिया, यद्यपि वे साक्षात कामदेव के वशीभूत हैं, उन्होंने केवल मेरे ही साथ प्रेम करने का चुनाव किया। जब दोनों प्रेमी वृंदावन जंगल के एक अन्य भाग से जा रहे थे तो विशिष्ट गोपी को अपने ऊपर गर्व हो आया। ये विशिष्ट मतलब श्रीमती राधा रानी की बात हो रही है। जब क्योंकि राधा रानी हाथ में चल रही है, उनको उठाया हुआ है, तो गोपी को भी अर्थात श्रीमती राधा रानी को भी क्या हुआ है, गर्व हुआ है कि भाई अब मुश्किल लग रहा है, गर्व महसूस किया। उसने भगवान केशव से कहा अब मुझसे और नहीं चला जाता, आप यहां भी जाना चाहें मुझे उठाकर ले जा सकते हैं। ऐसा कहे जाने पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया मेरे कंधे पर चढ़ जाओ, किंतु यह कहते ही वे विलुप्त हो गए। क्योंकि श्रीमती राधा रानी को बता रहे हैं भागवत में कि उनको भी थोड़ा सा गर्व हो पाया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे कंधे पर, जब तक कंधे तक गए तो कृष्ण भी गायब हो गए। अब कृष्ण भी गायब, अब उस गोपी को अत्यधिक कलेश महसूस हुआ, वह चिल्ला उठी, हे स्वामी, हे प्रेमी, हे प्रियतम, तुम कहां हो, तुम कहां हो, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, हे मित्र, अपनी दासी बेचारी को अपना दर्शन दो। श्री सुखदेव को समझ जाके बताते हैं, सुखदेव ने कहा कि कृष्ण के रास्ते को खोजते ही गोपियों ने अपनी दुखी सखी के पास ही पास में ही ढूंढ लिया, अब राधा रानी मिल गई उनको, और वह अपने प्रेमी के विचारों से मोहग्रस्त थी। अब उसने उन्हें बताया कि माधव ने उनको कितना आदर सम्मान प्रदान किया, किंतु अब वे उनके दुर्व्यवहार, अपने दुर्व्यवहार के कारण उनका अनादर झेलना पड़ा। गोपी यह सुनकर अत्यंत विस्मित हो गई। तत्पश्चात गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर उतरी, उतनी दूर तक गई जहां तक चंद्रमा की चांदनी थी, किंतु जब उन्होंने अपने अंधकार को घिरता देखा तो उन्होंने लौट आने का निश्चय किया। उन सबके मन में उनके अर्थात कृष्ण के विचारों में लीन होने से भी से वे उन्हीं के विषय में बातें करने लगी, उन्हीं की लीलाओं का अनुकरण करने लगी और अपने को उनकी उपस्थिति से पूरी तरह अनुभव करने लगी। वे अपने घरों के विषय में पूरी तरह भूल गई और कृष्ण के दिव्य गुणों का गुणगान करने लगी। गोपी फिर से कालिंद के किनारे आ गए, कृष्ण का ध्यान करो तथा उत्सुकतापूर्ण आशा लगाए वे आएंगे ही आएंगे, ऐसा वो सोचने लगी और गाने लगी। तो गर्ग संहिता में लिखा कि इस तरह से गायब होने के बाद कृष्ण फिर से प्रकट हुए और फिर से गोपियों को सांत्वना दी। तो ये था श्रीमती राधा रानी और गोपियों का श्री कृष्ण के साथ रास का अध्याय, जिसमें इस रास के विषय में बता रहे कि नारद जी, शिव जी और इवन लक्ष्मी जी भी एंटर करना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सेवा को ही और दे रखी है भगवान ने, है ना, तो उस डिपार्टमेंट को छोड़कर आ नहीं सकते, वो फेल, वो भाव अभी ऊपर उपस्थित नहीं है। इसलिए जब शिव जी को भी देते हैं मौका तो उनको गोप वेश की, गोपी वेश में देना पड़ता है, इसलिए गोपेश्वर महादेव आप दे सकते हैं जब रास में उन्होंने भाग लिया। लक्ष्मी जी भी रास करना चाहती हैं, लेकिन लक्ष्मी अपने ओपोनेंट्स को, अपने ऐश्वर्य को त्याग नहीं पाती, लेकिन प्रार्थना करती है भगवान से कि मुझे अपने वक्ष स्थल पर तो रखो, है ना। तो फिर वहां पर एक हेयरलाइन जैसा वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, तो वो रहती है कृष्ण। तो कहने का मतलब क्या है, बड़े बड़े देवता तक उस रास में एंटर करना चाहते हैं, है ना। ये तब पता चलता है भाव, जब हमारी आसक्ति कृष्ण से हो, भाव और प्रेम के स्टेज पर पता चलता है लोगों को। इसलिए जिस काम को इस संसार में जिसे हम ग्रस्त हैं, अगर हम चाहते हैं कि वास्तव में भगवान की अंतरंग लीलाओं में सम्मिलित होना या कृष्ण की सेवा करना सेवक सेवक के रूप में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस संसार वाले काम का त्याग करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, केवल और केवल कृष्ण के ही गुणगान से, कृष्ण की ही कथा श्रवण से। और वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र कैप्सूल ऐसा दे दिया कि इसका निरंतर जप करने से, कीर्तन करने से हम उन सारे भावों को ले आएंगे। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, ना भवेत ग्रहम इंद्रिया, अर्थात जिनकी इंद्रियां इस संसार में लगी हुई है, दूषित हैं, और इंद्रियां भी इसी संसार का सुख भोगना चाहती हैं, तो क्या होगा, ना ग्रहम इंद्रिया, उसको जो है कृष्ण का गुण रूप नाम और लीला कभी भी प्रकट नहीं होंगे उनके हृदय में। सेवोन मुखे ही जिह्वा दो सुमेव सुकृति यदा, अर्थात अगर क्या कर दिया, अपने सभी इंद्रियों को, ऋषि के न ऋषिकेश, मन को, वाणी को, इंद्रियों को अगर हमने कृष्ण की सेवा में लगा दिया, इस देह को जो कि कंटामिनेटेड है, दूषित है, सिद्ध बना दिया कृष्ण की सेवा में लगा लगाए, तो क्या होगा, सुमेव सुफर दिया था, इसी हृदय में उन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के अंतरंग जो आध्यात्मिक जगत की लीलाएं हैं वो प्रकट हो जाएंगे, सुमेव अपने आप होगा, इसके लिए कुछ अलग से एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। कई बार लोग कम स्टेज पर होते हैं, कम लेवल के होते हैं, उनकी अभी उनका स्टेज निष्ठा के स्तर पर भी नहीं आया, तो उनको लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब मैं क्या करूं, ये पढ़ लिया, ये सुन लिया, मुझे कुछ आगे चाहिए, तो इस चक्कर में क्या करते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, और शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, गलत गलत साधुओं के चक्कर में, या गलत गलत जगहों पे चले जाते हैं, ये सोचकर कि शायद ये पर्टिकुलर गुरु या ये व्यक्ति मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम डाल देगा। ये बाहर से इंजेक्ट नहीं किया जाता, कि क्या है, स्वमेव सफुरतिरता, यह अपने आप ही प्रकट होगा कि मेरा भाव कृष्ण से क्या है। लेकिन तब जब हम लोग निष्ठा, कम से कम निष्ठा के स्तर पर हो, अर्थात फ्रॉम फेथ इन कृष्णस डिवोशन और उसके बाद रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, इन स्टेजेस को क्रॉस करेंगे तो सब कुछ हमें अपने आप मिलेगा, ये बाहर से इंजेक्ट नहीं किया जाएगा, है कि नहीं। तो हम सबको चाहिए कि हम सब लोग भगवान के इन नामों का जप करें ताकि हम लोग भगवान के सेवा कर सके जिस तरह से भगवान चाहते हैं। हरे कृष्णा। समय ज्यादा हो गया, धन्यवाद। किसी कोई प्रश्न है जी, क्या सर था माइक है?
जय श्री कृष्णा। नमस्कार गुरु जी। प्रेम और प्यार में गोपियों का कृष्ण के प्रति, तो प्रेम और प्यार में मुझे अंतर समझाइए।
प्रेम और प्यार एक ही चीज है। अच्छा, गोपियों में मतलब
गोपियों का
प्रेम है,
प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम था या प्यार था?
एक ही शब्द है, ज्यादातर अलग अलग शब्द में बोला जाता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है या प्यार हो, एक ही बात है, प्यार है ना, तो वो एक ही चीज ऑलमोस्ट, प्यार प्रेम में भी। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस संसार के प्रेम में और उन गोपियों के प्रेम में अंतर होता है, ये कह सकते हैं। हमारा अभी प्रेम नहीं है, अभी हमारा इस संसार से प्रेम है, प्यार है। जिससे प्रेम या प्यार होता है, हम हर चीज उसके लिए करना चाहते हैं, उसके बारे में चिंतन, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, मैं वो कैसे सर्व कर सकता हूँ। तो गोपियां सदैव उनके बारे में सोचती थी। कई बार भक्त लोग जब बृहद भागवतम में आता ना कि सबसे ऊंचे भक्त की बात चर्चा हुई कि कौन है सबसे ऊंचे, तो सब भक्तों ने बोला मैं नहीं, किसी ने बोला प्रहलाद महाराज, उन्होंने कहा मैं नहीं, हनुमान है ना, अरेकी का नाम बताया इस तरह से। लेकिन बाद में सबसे ऊंची बात आई गोपियों की, कि गोपियों का प्रेम कृष्ण का प्रति जो है सबसे ऊंचा है, तो माधुर्य रस में है, प्लस उन्होंने अपना सर्वोच्च निछार कर रखा भगवान के, अपने पति, अपने बच्चों, अपने किसी का ध्यान नहीं देती और केवल कृष्ण, तो उस तरह से। हाँ जी,
जो है उन्होंने थोड़ा सा यही बोला कि मतलब कि हम बहुत फॉर्चुनेट है ना, बहुत फॉर्चुनेट मतलब कर दिया हमने आपको, तो इतने वेकेशन चले गए, तो इसको कैसे समझे, मतलब ये प्राइड है या क्या है? मतलब
हाँ, भगवान तो कह रहा है कि छोटा गर्व तो है, और कृष्ण को बहाना भी तो चाहिए ना गोपियों का प्रेम अपने प्रति और बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि कृष्ण नाराज हो गए तो फिर दोबारा नहीं आएंगे, वो दोबारा प्रकट हुए, बात रहना तो उनके बीच में ही है कि नहीं। लेकिन कृष्ण गर्व नहीं देखना चाहते किसी, सौभाग्यवश उन्होंने ऐसा बोला था या सोचा था, तो उस पर्टिकुलर क्षण में कृष्ण उस लीला को और आनंदित करने के लिए, उसके अंदर और रस डालने के लिए, क्योंकि प्रेम संभोग जिसे बोलते हैं, मिलन और विच्छेद, अलग होना, अलग होना हमारे प्रेम को और बढ़ा देता है कि अब फिर दोबारा मिलना है। तो इसलिए वृंदावन में लीलाएं ऐसी होती हैं, ज्यादा कुछ नहीं मिलता, तो कैसे रोज ही मिल रहे हैं, रोज ही सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है। लेकिन ऐसे मौके भी आते हैं जब श्रीमती राधा रानी मान कर बैठती है, गोपियां सारी बगावत कर देती कृष्ण के प्रति, तो ऐसे रसों का भी आस्वादन करते, तो कोई ना कोई घटना हुई होती है, कृष्ण को मौका चाहिए कुछ ना कुछ करने। रोज रूटीन में एक ही एक्टिविटी करेंगे तो खैर आध्यात्मिक जगत है तो रोज एक्टिविटी में भी आनंद है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए कहानी में, तो थोड़ा सा अच्छा प्रेम सौभाग्यवश उन्होंने ऐसा फील किया तो कृष्ण थोड़ा दूर हो गए। अब वो फिर से दयनीय स्थिति में है, कृष्ण का स्मरण कर रही है, वृक्षों से पूछ रही है, सब कुछ कर रही है ना, तो ऐसा दिखता है। लेकिन फिर उनकी कृष्ण के बारे में और स्मरण करना शुरू करती है, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हैं, इतना स्मरण करती है कि बोलती कृष्ण मैं ही हूं, तो मैं ही कृष्ण, ऐसा भाव आ जाता उनका। तो ये केवल भावों का आदान प्रदान के लिए, और कृष्ण वैसे भी नेचुरली गर्व होना ही नहीं चाहिए, भौतिक में तो होना ही चाहिए, आध्यात्मिक गर्व एक लीला को संपूर्ण करने के लिए, उसको और टेस्टफुल बनाने के लिए। बिल्कुल है, अगर हमारे अंदर ऐसा गर्व है कि हाँ हम लोग बहुत अच्छे उसमें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी जिस स्टेज में हम हैं उस स्टेज में साधक जो है गर्व कर सकता है, उसको अच्छा लग सकता है, लेकिन उस गर्व का नुकसान ना हो, अर्थात वो इतना लोगों को इंफीरियर और अपने को सुपीरियर ना समझे जिससे उसके प्रति ऑफेंस करने लग जाए अन्य जीवों के प्रति, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, जब धीरे धीरे भक्त आगे बढ़ते, जैसे शुरू में बोलते हैं हाँ कृष्ण चाहिए हमें, जन्म मृत्यु से अलग होना है पहले ये सीखते हैं, तो हम लोग उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर बाद में बोलते नहीं जन्म मृत्यु पराम नहीं होना है, हमें तो कृष्ण के धाम जाना है, वैकुंठ भी नहीं जाना गोलोक जाना है, तो उसका प्रयास करते हैं। बाद में बोलते नहीं हमको तो कृष्ण की सेवा करनी है, चाहे जन्म यहां हो चाहे नर्क में हो चाहे अध्यात्म में कहीं पर भी हो, लेकिन हमें कृष्ण की सेवा करनी है। उसी तरह भक्ति के स्तरों में भी हो सकता है कि अभी हमें गर्व में महसूस हो रहा किसी चीज का, अच्छा है उस स्टेज के लिए भी अच्छा है, लेकिन और आगे बढ़ेंगे तो मैं और फील आएगा कि नहीं ये चीज भी मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए, मुझे ये होना चाहिए। तो कृष्ण परमात्मा अंदर से हृदय में ज्ञान देते हैं, ददा भी बुद्धि योग मेरे तक पहुंचने तक का मैं ज्ञान देता रहता हूं, तो आगे ठीक करता हूं। हाँ जी समय हो चुका है, जो लोग उठना चाहते हैं जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अलग समझ नौ दिन का कोर्स है,
थोड़ा सा
ठीक है। तो निष्ठा मतलब फर्म फेथ, जैसे बर्फ है, बर्फ बड़ी स्ट्रांग होती है, टूटती नहीं आसानी से, और अगर गल जाए तो पानी हो, तो जो कोमल श्रद्धा है हमारी, श्रद्धा मतलब जब हम लोग अभी फ्लिकरिंग श्रद्धा है हमारी, कृष्ण है नहीं है भक्ति करें ना करें, तो हमारा ऐसा फेथ है पेंडुलम की तरह हिलता है। और दूसरा जब हमारे भजन क्रिया करते हुए आदेशों का पालन करते हुए साधना का पालन करते हुए श्रवण कीर्तन स्मरण करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो हमारा फेथ कन्विक्शन बढ़ जाता है भगवान, तो वो पानी अब बर्फ का रूप ले लेते हैं। और फिर रुचि की स्टेज ऐसी है, क्योंकि संसार में हम देखते हैं जिनकी धन कमाने में रुचि है, स्त्री भोग में रुचि है, अच्छा सुंदर दिखने में रुचि है, नेम एंड फेम में रुचि है, तो सारे काम उसके इर्द गिर्द करता है। तो जब हमारे को कृष्ण के नामों में रुचि होती है तो फिर व्यक्ति खाली नहीं बैठता, अव्यर्थ कालक हो वो अपना खाली समय नहीं छोड़ता, वो हर समय कृष्ण का नाम लेना चाहे। जैसे बिजनेस मैन है प्रॉफिट कमाना चाहता तो एक अपॉर्चुनिटी भी ऐसी नहीं छोड़ेगा जिसमें उसको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ना छोटा या बड़ा, चाहे 100 रुपए का भी बेनिफिट है वो बेचेगा सामान, एक में 1000 रुपए का बेनिफिट है उसको भी बेचेगा, क्योंकि चाहेगा कि मैं। तो रुचि की स्टेज पे हम लोग अपना हर समय कृष्ण के नाम में लगाने का प्रयास करें। आसक्ति की स्टेज ऐसी है, जिस स्टेज में आसक्त मतलब जैसे बालों से च्युइंगम चिपक चुका है, अब निकलना बड़ा मुश्किल है ना, तो ऐसी अटैचमेंट कृष्ण से मतलब उनके बारे में सोचना, उनके बारे में कहना, उनके बारे में क्रिया करना, तो पूरी से अटैचमेंट हो चुकी है, अब वो हृदय में दूसरे भाव या दूसरी चीजें नहीं आती। सटल वे में बहुत कुछ कम रह सकता है कोई छोटी सी चीज, जैसे भाव के स्टेज में जड़ भरत महाराज भी वापस आए एक लीला के अनुसार, फिर भाव के स्टेज में भगवान का दर्शन भी होता है, अश्व सात्विक विकार शरीर में आने शुरू हो जाते हैं, आंसू निकलना, रोना उच्च स्वर में, कभी हंसना, पागलों की तरह थोड़ा सा व्यवहार करना, जमीन पे लोटपोट हो जाना। लेकिन वैष्णव जन ऐसे सिम्टम्स को रोकते हैं, वो दिखाते नहीं। अश्रु प्रवाह होना, बालों का खड़ा हो जाना शरीर में भगवान का नाम लेते, तो इस प्रकार भाव के लक्षण प्रकट होते हैं, और कृष्ण ऐसे में हृदय में उनको दर्शन भी देते हैं, ऐसी स्टेज आती है। फिर उनका रोना और बढ़ जाता है भगवान से, जैसे भगवान अपने को लुप्त कर लेते हैं तो फिर और रोना शुरू हो जाते हैं। जैसे अब हम शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं तो सारे 8 श्लोक इसी के साथ बताए गए, शून्य इदम जगत सर्वम गोविंद गृहेण, जब दर्शन नहीं होता तो उनको लगता पूरा जगत शून्य में, कहां हूं क्या हूं कुछ पता नहीं। इस प्रकार जैसे शराबी व्यक्ति शराब पीने के बाद उसको ये नहीं मालूम होता मैंने क्या पहना है क्या नहीं करना है, कहां गिराऊं कहां उठाऊं, तो एक भक्त भाव के स्टेज में ऐसा हो जाता है, श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन है, ये एग्जांपल दिया है शराबी का। और प्रेम के स्टेज में फिर व्यक्ति को और अनुभूतियां होती हैं, कृष्ण का दर्शन भी होता है, अनुभूतियां होती हैं कि मेरा कृष्ण के साथ आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में क्या रूप है, क्या स्वरूप है, मुझे क्या सेवा करनी है, मैं कैसे व्यस्त रहता हूँ, ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। और उसके बाद कुछ स्टेजेस और भी आ गए, प्रेम की ही अन्य चीजें भी बताई हैं कि फिर पर्टिकुलर कौन से भाव में प्रेम में भी, तो वो सब चीजें गोपी के अंदर ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की।